पहला क्वेश्चन, हाउ वी रिलेट मेडिटेशन एंड अवेयरनेस, बिकॉज इन मेडिटेशन वी हैव टू क्लोज आवर आईज एंड फोकस ऑन सिंगल पॉइंट एंड इन अवेयरनेस वी हैव टू ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग, सो हाउ कैन वी रिलेट बोथ थिंग्स, हाउ शुड वी बी अवेयर विथ क्लोज आईज, हाउ शुड बी अवेयर ऑफ सोसाइटी विथ क्लोज आईज एंड हाउ एजुकेशनल रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल in bracket mein meditation closed eyes
in what in
meditation in brackets closed yeah. eyes
yes
and the similar question religion restricts you to the current
I deal with the first no. one. It's a bit different isn't it yeah
okay
yeah so of course when we talk about awareness awareness isn't general
to jab hum jagruti ki ya sajagta ki baat karte hain to ye sarvasamanya jagruti nahi hoti.
And whenever you are aware of one thing you're not necessarily aware of another
to aap kisi ek vishay mein sajag ho to iska matlab ye nahi ki aap dusre vishay mein bhi sajag ho.
So when you're thinking about somebody in particular you're not thinking about somebody else
to jab aap kisi ek vishesh ke vishay mein soch rahe hote to aap dusre vyakti ke bare mein nahi soch rahe hote
so awareness can't be you can't take in everything at once
to jagruti mein ya sajagta mein aap har cheez ko ek hi waqt mein ek hi samay mein nahi le sakte
so we must think of awareness as something that it attends to different objects
तो हमें जागृति या सजगता के विषय में इस तरह से सोचना है कि वो अलग अलग विषय वस्तुओं पर अलग अलग समय पे ध्यान दे रही है
इन मेडिटेशन वी विथड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द आउटवर्ड सेंस ऑब्जेक्ट्स
तो ध्यान में हम क्या करते हैं कि बाहर की जो विषय वस्तु होती है उससे हमारा ध्यान हटाते हैं
And we pay attention to inner subtle experience.
और हमारा अंदरूनी जो सूक्ष्म अनुभव होता है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं
But you'll find that that means when you do attend to the outer world, your mind is stronger, sharper, clearer.
और इसका मतलब ये होता है कि जब आप बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तब आपका ध्यान जो होता है वो और अधिक सूक्ष्म होता है और अधिक स्पष्ट होता है और शक्तिशाली भी होता है
It's a bit like playing kabaddi.
तो एक तरह से कबड्डी के खेल जैसा है
You do, maybe you do press ups.
तो हो सकता है उसके लिए आप प्रेस अप करते हैं
Well, you could say, but you're not winning kabaddi. You're not going kabaddi, kabaddi, kabaddi when you're doing press ups.
तो जब आप प्रेस अप करते हैं तब कबड्डी कबड्डी आप बोल सकते हैं लेकिन आप कबड्डी कबड्डी खेल नहीं रहे उस वक्त
How is that helping us to win?
तो अभी प्रेस अप आपको कबड्डी खेलने में किस तरह से मदद कर रहा
है? But of course you're building your muscles.
तो निश्चित ही आप जो है अपने स्नायुओं को मजबूत कर रहे हैं
So you can lift them up.
ताकि आप उस जो प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी है उसको उठा सकते
So you could think of it like that. It's a little bit more to it than that, but you could think of it like that.
इस तरह से आप उसके विषय में सोच सकते हैं इससे ज्यादा भी बात है उसमें लेकिन ऐसा सोच सकते
Through, for instance, Anapanasati, you're strengthening your mind.
तो अनापानसति के माध्यम से आप अपने मन को सशक्त बना रहे हैं
So your awareness of society when you attend to it will be much, much clearer.
तब जब आप समाज के ऊपर ध्यान देते हैं तो उस वक्त आपकी सजगता जो है या जागृति और ज्यादा स्पष्ट होगी
This morning I talked about the way in which wrong views colonize our minds.
तो आज सवेरे मैं ये बता रहा था कि किस प्रकार से गलत धारणाएं जो है हमारे मन में घर कर लेती
है So when we look at society, we see it through our wrong views.
और इसलिए जब हम फिर समाज की ओर देखते हैं तो हम हमारे गलत दृष्टिकोणों में से उसे देखते हैं
So when you meditate successfully, for a little while you're beyond those views.
और इसलिए जब आप यशस्वी तरीके से ध्यान करते हैं तो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो आप इन दृष्टिकोणों से दूर होते हो
So when you bring your attention back to the world around you, you see it more clearly.
और फिर जब दुनिया की ओर वापस आप अपना ध्यान लेकर आते हो तो उस दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हो
So you could say that through the kind of meditation practice we're doing, you strengthen the mind and you purify the mind.
और आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार के ध्यान अभ्यास हम कर रहे हैं उसके माध्यम से आप अपने मन को सशक्त भी करते हैं और शुद्ध भी करते हैं
And I keep on asking you at the end of the meditation to reflect on your experience.
और ध्यान खत्म होने के बाद मैं आपको पूछते रहता हूँ या कहते रहता हूँ कि अपने अनुभव के ऊपर आप सोचिए चिंतन कीजिए
Because after some time you'll begin to actually see this for yourself.
क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये जो चीजें हैं आप अपने लिए खुद ही देखने लगोगे.
At the moment, I'm telling you this is what meditation does.
और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से ये होता है.
But it won't take long for you to actually experience this to some extent.
लेकिन इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप करते कि आप खुद ही उसको देख पाओ.
So when you're meditating, very, very good afterwards, just to pause and see how you are.
तो अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए उसके बाद रुक जाइए और देखिए कि उस वक्त आप कैसी स्थिति में.
It will change you to some extent.
और कुछ हद तक वो आपको परिवर्तित करेगा.
So see how it changes you.
तो देखिए कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है.
So there's a little bit more to the question.
How should we be aware with closed eyes? How should we be aware of society with closed eyes? And how educational revolution is possible with closed eyes?
I think I've made that all clear now. I think the other points.
मुझे लगता है कि ये सारी बातें उसमें स्पष्ट हो गई हैं. Religion restricts you to the current understanding of anything. So Buddhism is not any different at times. So why Buddhism? And meditation and other practices have become very rigid. So why can't we create something new? What should we do and create?
Well, I to some extent agree with some of the points that are made. You need it in Hindi, don't you?
तो कभी कभी धर्म आपको जो है वो सीमित कर देता है और बौद्ध धर्म भी इससे कुछ अलग नहीं है. तो फिर बौद्ध धर्म की क्यों आवश्यकता है? और ध्यान और अन्य इसी प्रकार के अभ्यास जो है वो बहुत सख्त ऐसे कुछ हो गए जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है. तो हम कुछ नया क्यों नहीं बना सकते? और अगर हमें कुछ नया बनाना है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
To some extent, I agree. I think that Buddhism can be quite, or some forms of Buddhism can be quite rigid and formalistic.
तो कुछ हद तक मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो बहुत कड़े या सख्त है जिसमें बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं.
This is a universal human phenomenon, isn't it?
और ये एक वैश्विक ऐसी प्रक्रिया है.
We turn things into something fixed and rigid.
हम चीजों को मतलब पक्का कर देते हैं.
But I think I made clear this morning that if Buddhism is really the Dhamma, it doesn't work like that.
लेकिन आज सवेरे ही मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म अगर वास्तव में धम्म है तो वो इस प्रकार से कार्य नहीं करता.
Because you move from trying to understand the Buddha's teaching.
क्योंकि आप बुद्ध की शिक्षाओं को समझने से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं.
You move from that to actually realizing it for yourself.
और वहां से आगे बढ़कर आप उनको अपने अनुभव में मतलब उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं.
So we take advantage of the Buddha's own experience and realization.
और इसीलिए बुद्ध का अपना जो अनुभव था या उनके जो अपने अनुभव का साक्षात्कार था उसको हम लेते हैं.
And then we try to discover that directly for ourselves.
और फिर खुद अपने लिए उसको खोजने का हम प्रयास करते हैं.
So I hope that's very clear from what I was saying this morning.
और मुझे लगता है कि आज सवेरे मैंने जो कुछ भी कहा उसमें से ये चीज स्पष्ट हुई होंगी.
You could say, well, why don't we just work it out for ourselves from the start?
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शुरू से ही हम अपनी चीजें जो है खुद के लिए क्यों ना खोजें?
Well, you can do. That's up to you.
तो आप कर सकते हैं, वो आप ही के ऊपर है.
But it may take you a long time.
लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय लग जाए, लंबा समय लग जाए.
So, you know, it's a bit like when you're studying physics.
तो ये ऐसा ही है जैसे आप मतलब फिजिक्स या भौतिक शास्त्र का अभ्यास करते हैं.
So, I don't want to listen to Einstein.
तो आप ऐसा कहोगे कि मैं आइंस्टाइन की कुछ नहीं सुनना चाहता.
I want to discover the theory of relativity all by myself.
और थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है मैं खुद ही अपने लिए ढूंढना चाहता हूँ.
Well, that's crazy, isn't it?
तो ये मूर्खता है.
Why not start with his understanding and then move on from there?
तो क्यों ना उसकी समझ से शुरुआत की जाए और वहां से फिर आगे बढ़ा जाए.
Of course, it's not exactly the same in Buddhism because it's not a merely intellectual realization.
और बौद्ध धर्म के साथ ऐसा ही नहीं है क्योंकि केवल वो केवल बौद्धिक समझ नहीं है.
But it surely makes sense to take advantage of the experience of somebody like the Buddha.
लेकिन ये बात समझदारी की है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जैसे बुद्ध और उनकी क्या समझ है उसका हम कुछ लाभ ले
and then to try to understand that intellectually
और बौद्धिक रूप से उसे समझने की कोशिश करें
to test it in our experience
अपने अनुभव में उनकी बातों की जांच करें
and then realize it for ourselves
और खुद ही फिर देखें कि क्या मेरा भी अनुभव वैसा है या नहीं
so I think Buddhism when it is truly the Dhamma avoids the problems that the question points to
aur agar bodh dharm vastav mein dhamma hai to us sawal mein jo bhi baatein kahi gayi hai wo baaton ko wo talta hai matlab wo nahi hota
you could say that in the Buddha Dhamma you see a sort of process going on again and again in history
तो बौद्ध धर्म में आप देख सकते हो कि एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया बार-बार होती रही है इतिहास में।
You see an original creative realization.
तो आप देखते हैं कि एक मूल और सृजक ऐसे कोई निर्मिति होती है।
The Buddha had that realization.
और बुद्ध ने उस अनुभव को प्राप्त किया था।
So the Buddha communicates his realization to others.
तो बुद्ध का जो अनुभव था उस अनुभव के विषय में उन्होंने अन्य लोगों को बताया।
And they realize its truth for themselves.
और उन्होंने अपने लिए भी उस अनुभव की जांच की या उसी अनुभव को स्वयं के लिए भी उन्होंने अनुभव किया।
The Buddha said himself, "I am free from all suffering." You too are free from all suffering.
और बुद्ध ने खुद ही कहा कि मैं स्वयं सभी दुखों से मुक्त हूँ और आप भी सभी दुखों से मुक्त हो।
So a teaching develops, an institution develops.
तो एक शिक्षा का विकास होता है, उसमें से एक शैक्षणिक संस्था का विकास होता है।
But after many generations, maybe it becomes more and more dead and dry.
लेकिन कई पीढ़ियों के बाद वो शिक्षा या शैक्षणिक संस्था जो है उसमें एक रूखापन आने लगता है
and it needs reform
और उसमें फिर सुधार या उसी की नव निर्मिति की आवश्यकता
needs to go back to that original inspiration that original realization
और हमें वापस उस मूल प्रेरणा और उस मूल अनुभव की ओर लौटने की आवश्यकता होती है
and we're very fortunate that we benefit from two very great figures of that kind
और हम बहुत ही सुदैवी है कि इस प्रकार के जो दो बहुत महान व्यक्तिमत्व थे उनका हमें लाभ मिला है
Dr. Babasaheb Ambedkar refreshed the Buddha Dhamma for the modern world
तो बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एकदम तरोताजा कर दिया है आधुनिक दुनिया के लिए
उर्गेन संगरक्षिता refreshed the path and the sangha for the modern world
और उर्गेन संगरक्षिता ने आधुनिक दुनिया के लिए मार्ग को और संघ को नव जीवन दिया या नया स्वरूप दिया है
The combination of the two is extremely powerful.
और इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो बहुत ही सशक्त है.
And so it's a new expression of the original experience of the Buddha.
तो बुद्ध का जो मूल अनुभव था, उसकी ये एक नई अभिव्यक्ति है.
Personally, I'm very happy to take advantage of their renewal.
और उन्होंने जो पुनर्निर्मिति या नव निर्मिति की है उसका लाभ लेने में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद महसूस करता
हूँ। If you want to go some other way and do it your own way, that's okay. I don't mind.
अगर आप किसी और रास्ते जाना चाहते हैं, अपनी तरह से करना चाहते हैं, तो ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं है उसमें।
We have an expression in English. It's no skin off my nose.
तो हमारे पास अंग्रेजी में एक मतलब वाक्यांश है कि मेरे नाक की चमड़ी नहीं जाती उससे।
It doesn't matter to me.
तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
But personally, I'm very happy to take advantage of the Buddha's realization.
लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ बुद्ध के अनुभव से लाभ लेने
The refreshment of that, the teaching that he gave us from these two very great men.
और उस शिक्षाओं को तरोताजा करके इन दो महान लोगों ने जो प्रदान किए उससे
And I hope that I am arriving more and more at my own realization.
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं अधिक से अधिक अपने अनुभव तक भी पहुंच रहा हूं मतलब अपने अनुभव में भी उनको देखने
का that I'm speaking more and more from my own experience.
और अब मैं ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभव में से बात करता हूं हाउ मैत्री भावना इज प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी तो मेत्ता भावना जो है वो लोकतंत्र का अभ्यास किस प्रकार से
लोकतंत्र क्या है
तो डेमोक्रेसी क्या है
वेल बाबा साहेब सेज इट्स नॉट जस्ट अ वे ऑफ वोटिंग
तो बाबा साहब कहते हैं वो केवल मतदान करने का तरीका नहीं है.
It's not just a way of choosing a government.
तो वो केवल सरकार चुनने का तरीका नहीं है.
He says it's an attitude, huh?
वो कहते हैं कि वो एक मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है.
And he says very clearly it's an attitude of respect and reverence of one citizen for another.
और वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वो एक नागरिक का दूसरे नागरिक के लिए सम्मान और आदर का भाव है.
You can see we've got some way to go to be a real democracy.
और आप देख सकते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र या प्रजातंत्र तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रास्ता तय करना बाकी है.
And he says that of course democracy is equivalent to liberty, equality, fraternity.
और वो ये भी कहते हैं कि प्रजातंत्र मतलब ही समता, स्वतंत्रता और बंधुता है.
And especially that democracy implies bandhutva.
और खास करके लोकतंत्र का अर्थ है बंधुत्व.
What is bandhutva?
और फिर बंधुत्व क्या है?
It's maitri.
वो मैत्री है.
It's an attitude of maitri for every citizen.
तो हर नागरिक के लिए मैत्री की वो वृत्ति है.
So that's an idea.
तो ये कल्पना है.
And everybody will get up and shout about it on platform.
और हर कोई खड़ा हो जाएगा और मंच पे उसके विषय में चिल्लाते रहेगा.
But how do you actually practice that?
लेकिन वास्तव में आप मैत्री का आचरण कैसे करते हैं?
So the Maitri Bhavana is your way of training yourself in that attitude.
तो मैत्री भावना एक तरीका है कि आप उस वृत्ति को अपने में लाने का स्वयं को प्रशिक्षण देते हैं.
Really, before people are allowed to vote, they should be made to do the Maitri Bhavana.
तो लोगों को मतदान करने का अधिकार देने से भी पहले उनको उनसे मैत्री भावना करवाना चाहिए.
I'm joking, but I'm not joking.
तो मैं मजाक कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ.
Of course, you can't force people to do the Maitri Bhavana.
तो निश्चित ही आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो मैत्री भावना करे.
After all, I couldn't get all of you to do it.
आप लोगों से नहीं करवा सकता.
You have to want to do it yourself.
तो आपके खुद के अंदर वो चाह होनी चाहिए कि मुझे करना है.
But it's a way of training yourself to be able to see people not through the lens of particular group, class, caste, whatever.
लेकिन ये एक प्रशिक्षण है जिसमें आप लोगों को प्रशिक्षण प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो लोगों को जाति, राष्ट्र, धर्म इत्यादि के चश्मों से ना देखें.
But it's a way of training yourself to see others as human beings just like you.
तो ये एक प्रशिक्षण का मार्ग है जहाँ पे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी आप अपने ही तरह मनुष्य के रूप में देखें.
I quite seriously believe that the practice of Maitri Bhavana is revolutionary.
और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात में बहुत यकीन रखता हूँ कि मैत्री भावना का अभ्यास बहुत ही क्रांतिकारी है.
It changes our relationship to people around us.
और हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसके संबंधों को ये बदल देता है. Why we do not say humanism besides Jai Bhim or Namo Buddhaya? I think instead of Jai Bhim or Namo Buddhaya, why don't we say humanism?
Humanism.
Humanism. तो जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ या उसकी बजाय हम मानवतावाद वगैरह ऐसा कुछ क्यों नहीं करते?
Well, I'm not sure what you'd say to express that.
तो मुझे नहीं पता कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए आप क्या कह सकते हो.
I suppose you'd have to say something like Jai Lok.
तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए शायद आपको ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, जय लोग.
Why not? That's a good thing to say, yeah?
और क्यों नहीं, अच्छी चीज है उसको कहना भी.
Well, you know, the Muslims say salam alaikum.
तो आप जानते हैं कि जो मतलब मुसलमान लोग होते हैं वो कहते हैं सलाम वालेकुम.
The Jews say shalom, which is the same thing.
और जू लोग कहते हैं शलाम, यहूदी लोग एक ही बात है वो.
Which means peace be with you.
और जिसका अर्थ होता है कि शांति आपके साथ बनी रहे.
And in a way that's a quite humanistic call, yeah?
बहुत ही मानवतावादी ऐसा वो अभिव्यक्ति है.
But when we're with people who share our own teachers and inspiration, well, we greet each other in that way.
लेकिन जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जहाँ पे हम सबकी प्रेरणा एक जैसी होती है, हम सब के शिक्षक या गुरु एक जैसे होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ उसको बांटते हैं.
Because we want to express our inspiration.
क्योंकि हम हमारी प्रेरणा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं.
A shared inspiration.
और वो प्रेरणा जो हम सबकी एक समान है, जिसको हम साझा करते हैं.
But you need to be careful when you're in general society.
लेकिन जब आप सर्वसामान्य समाज में होते हो, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता
है. If you say these things, you may alienate people.
तो अगर आप ऐसे शब्द कहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को अपने से दूर कर दो.
So you need to try to make sure that when you greet people, you do it in a way that they can respond to.
तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब लोगों को मतलब मिलते हो, तो इस तरह से करना होता है कि
they can respond to.
वो आपको प्रतिसाद दे सके.
We used to have on these retreats sometimes an issue with Jai Bhim.
तो ये जो शिविर है, इसमें कभी कभी जय भीम के साथ कुछ समस्या आ जाती थी पहले.
Because some people coming came from different communities which did not see Baba Saheb in that way yet.
क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है अलग समाज से आते थे, जो बाबा साहब को उसी प्रकार से नहीं देख पाते थे तब तक, मतलब शिविर में आने तक.
And some people would get annoyed when other people didn't respond with Jai Bhim.
और फिर कुछ कुछ लोगों को मतलब बुरा लगता था कि जब वो कह रहे हैं और दूसरे लोग उनको जय भीम से प्रतिसाद नहीं दे रहे.
Well, that's not very good, is it?
तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है.
In other words, you're using Jai Bhim as a sign of a group.
तो क्योंकि आप अगर नाराज हो रहे हैं, तो जय भीम आप एक समुदाय के चिन्ह के स्वरूप में इस्तेमाल कर रहे हो.
So we need to be careful about it.
तो इसके विषय में हमने ध्यान देना चाहिए.
What we want to do is create a connection with people.
तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ संबंध बनाना चाह रहे हैं.
They come in the end to understand how important Baba Saheb is.
तो अंत में वो समझ ही जाएंगे कि बाबा साहब कितने महत्वपूर्ण हैं.
Not just for अपने लोग.
सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं समझेंगे.
सर्वलोग, for सर्वलोग.
तो सभी के लिए मतलब.
सर्वलोग अपने लोग आ है.
तो सभी लोग जो है वो अपने लोग हैं.
So we need to be careful to make sure that we create connections with people.
तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम लोगों के साथ संबंध बनाएं.
We worked hard in NMBY to make sure that there's no caste exclusivity here.
तो हमने NMBY में बहुत कड़ा प्रयास किया है ऐसी परिस्थिति को निर्माण करने के लिए कि कोई भी जाति जो है वो अपने आप को अलग ना समझे.
So we try to make this a casteless environment.
तो यहाँ पर हमने एक जाति विरहित वातावरण बनाने का प्रयास किया.
Well, we just don't think in those terms.
और हम उस संदर्भ में सोचते भी नहीं.
So we need to try to do whatever we can to include people.
और इसीलिए लोगों को अपने साथ समाविष्ट करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हमने करने का प्रयास करना.
But personally, I really enjoy saying Jai Bhim to people who feel Jai Bhim.
लेकिन जो लोग जय भीम को महसूस कर सकते हैं, उन लोगों को जय भीम करना मुझे खुद को बहुत अच्छा
लगता है. Because I also want Bhim to be victorious.
क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भीम की विजय हो जाए.
Which means, of course, I want to see a casteless society.
जिसका अर्थ ये है कि मैं भी एक जाति विरहित समाज देखना चाहता
हूँ. I want to see everybody attain enlightenment.
मैं देखना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ है. How can we prove Buddhahood scientifically?
How can we prove
Buddhahood scientifically? तो well, वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे साबित कर सकते हैं कि बुद्धत्व है?
So I suppose you can say that you can tell whether somebody's enlightened or not by the way they behave.
तो कोई किसी ने बुद्धत्व प्राप्त किया है या नहीं है, या आप इस बात को देखकर बता सकते हैं कि उनका बर्ताव या व्यवहार किस प्रकार का है.
You can't put some meter on their head and say, ah yes, enlightenment is there.
तो कोई मीटर आप उनके सर पे नहीं रख सकते और आप ऐसा नहीं कह सकते हाँ यहाँ पर बुद्धत्व है.
Otherwise we'd have a machine set up somewhere and test you all.
नहीं तो कहीं पर एक मशीन लगी होती और जिसमें आप सबकी जांच होती.
Okay, 10% enlightenment.
हाँ तो 10% बुद्धत्व.
Okay, -5%.
-5% बुद्धत्व.
It's not like that. Yeah?
तो ये इस प्रकार से नहीं होता है.
But enlightenment shows in your behavior.
लेकिन बुद्धत्व जो है वो आपके व्यवहार में नजर आता है.
So for instance, the precepts define somebody who's enlightened. करती
हैं। उदाहरण के तौर पे शील उन चीजों की व्याख्या करते हैं कि किसी ने बुद्धत्व प्राप्त किया है या नहीं।
An enlightened person does not harm other living beings.
तो एक बुद्धत्व प्राप्त जो व्यक्ति है वो किसी भी अन्य सजीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।
An enlightened being does not take what is not given.
और एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति ऐसी कोई चीज नहीं लेता जो उसे नहीं दी गई
है। And so on.
और इसी प्रकार से बाकी बातें।
You'd expect that an enlightened person was compassionate.
और आपको ये अनुभव आएगा कि जो बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति है वो करुणावान है।
You'd expect that they were free from craving and hatred.
और आप ऐसे अपेक्षा करेंगे कि वो तृष्णा और द्वेष से मुक्त है।
So their enlightenment will show in their way of being in the world.
तो उनका बुद्धत्व जो है उनके दुनिया में व्यवहार करने के तरीके से झलकेगा, नजर आएगा।
Will show in their behavior towards others.
तो दूसरों के साथ जो उनका व्यवहार है उसमें वो नजर आएगा।
So yes, you can only tell whether somebody is enlightened or not by their behavior.
तो कोई किसी ने बुद्धत्व प्राप्त किया है या नहीं है केवल ये उसके व्यवहार से ही बताया जा सकता।
And well, we know quite a bit about the Buddha.
बुद्ध के बारे में हमें बहुत कुछ पता है।
There's extensive records of his teaching and of his life.
तो बहुत बड़ा विस्तार है उनके मतलब शिक्षाओं के विषय में जिसमें बताया गया है और उनके जीवन के विषय में जानकारी।
And he displayed the qualities of a Buddha.
और उन्होंने बुद्ध के जो गुण है वो प्रदर्शित किए हैं।
And what he said about the way things are, one can find to be true.
और उन्होंने जो भी बताया है चीजों के वास्तविक स्वरूप के विषय में कि ऐसा है तो आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि वो सच है।
So you can use what evidence is available to us to conclude that he's enlightened.
और जो भी सबूत हमारे समक्ष है उसका हम उपयोग कर सकते हैं और इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सकते हैं कि वो बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति।
But really you can only prove the existence of Buddhahood by being a Buddha.
लेकिन बुद्धत्व है या नहीं ये केवल आप बुद्ध बनकर ही साबित कर सकते हैं।
So if you really want to know whether there's such a thing as enlightenment, try to gain enlightenment.
तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि बुद्धत्व जैसे कोई चीज है या नहीं तो फिर बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।
Because it's only by experiencing it for yourself that you'll know finally whether there is such a thing or not.
क्योंकि जब आप अपने लिए पूरी तरह से उसको अनुभव कर लेंगे तभी आप उस बात को देख पाएंगे कि वो है या नहीं है।
Personally, I'm convinced that the Buddha was enlightened.
व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात का यकीन है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त की।
Partly from the evidences of the scriptures.
तो अंशतः इसलिए क्योंकि मतलब जो भी बौद्ध साहित्य है उसमें उसके सबूत है।
Partly from my experience of his teachings.
और अंशतः इसलिए कि उनकी शिक्षाओं का मैंने जो कुछ भी अनुभव लिया है।
And partly from my own meditative experience.
और अंशतः मेरे अपने ध्यान के अनुभव में से।
I don't mean that I'm enlightened.
मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैंने बुद्धत्व प्राप्त
किया। Anyway, it's obvious to you that I'm not.
वो तो वैसे भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने नहीं प्राप्त
किया। Certainly obvious to my friends. But in meditative experience, one sees directly what the Buddha is talking about.
लेकिन ध्यान के अनुभव में हम प्रत्यक्ष रूप से इस बात को देख लेते हैं कि बुद्ध किस विषय में बात कर रहे हैं।
I'm not saying this to convince you. I'm telling you that I'm convinced.
तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे उसका यकीन है।
But in my own meditative experience, I've seen the truth of what the Buddha is saying, and therefore consider him to be enlightened.
लेकिन मैंने अपने ध्यान के अनुभव में उन बातों की सच्चाई को देखा है जो बुद्ध ने कही है और इसीलिए मुझे उन पर यकीन है। What after liberation and Buddhism in married life?
Are they the same question? No.
तो विमुक्ति के बाद क्या वैवाहिक जीवन में बौद्ध धर्म?
We'll take those two questions separately.
तो हम दोनों सवालों को अलग-अलग से लेंगे।
Because marriage is not the same as liberation.
क्योंकि विमुक्ति और वैवाहिक जीवन या शादी एक ही बात नहीं है।
What happens after liberation?
तो विमुक्ति प्राप्त करने के बाद क्या होता है?
Well, the one major figure we know who gained enlightenment was the Buddha.
एक प्रमुख व्यक्ति जिसके विषय में हमने जानते हैं कि जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया है वो है बुद्ध.
He gained enlightenment at Bodh Gaya, gained liberation at Bodh Gaya, probably about the age of 26, 27, we think.
तो 27 से 28 साल की उम्र में बोधगया में उन्होंने बुद्धत्व को या विमुक्ति को प्राप्त कर लिया था.
So around the NNBY age.
तो NNBY की जो उम्र है उसी उम्र में.
Well, what happened after that?
और फिर उसके बाद क्या हुआ?
Did he just retire?
तो क्या वो बस निवृत्त हो गए?
The Nirvana rest home?
और निर्वाण का जो आराम करने का जो कक्ष था वहाँ चले गए?
No, he spent the rest of his life till he was in his late 80s, walking through India, teaching the way to liberation.
तो नहीं उन्होंने मतलब अपना उर्वरित जीवन बिताया मतलब 80-85 साल के होने तक पूरे भारत भर में वो भ्रमण करते रहे और वो अपनी शिक्षाएं देते रहे.
So you could say that when you're liberated from selfishness, well, selflessness takes over.
तो जब आप आत्मस्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं तो उसके जगह पर एक स्वार्थ रहित अवस्था आ जाती है.
In other words, compassion takes over.
और दूसरे शब्दों में करुणा आपके ऊपर हावी हो जाती है, करुणा आप में निकल.
So the Buddha became simply the embodiment of compassion.
तो दूसरे शब्दों में बुद्ध ऐसे व्यक्ति बन गए जो करुणा को धारण किए हुए या करुणा की अभिव्यक्ति थे.
And he walked tirelessly all over North India, teaching the way to liberation.
और बिना थके उत्तर भारत में वो मतलब भ्रमण करते रहे और अपनी विमुक्ति के विषय में वो सिखाते रहे.
So after liberation, compassion.
तो विमुक्ति के बाद करुणा.
Actually, before liberation, compassion.
और विमुक्ति के पहले भी करुणा.
But compassion becomes all that you are after liberation.
लेकिन विमुक्ति के बाद आप पूरी तरह से करुणा बन जाते हैं.
So then, what about married life and
Buddhism?
Well, what is the issue?
तो समस्या क्या है?
Married life is life.
तो वैवाहिक जीवन भी जीवन ही है.
It's not that when you get married you stop living.
ऐसा नहीं कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप जीना छोड़ देते हैं.
You've still got a brain, you've still got a mind.
तो तभी भी आपके पास दिमाग होता है.
You're still acting in the world.
और तभी भी आप दुनिया में अपना काम करते रहते हो.
So you still try to practice the Dhamma.
तब भी आप धर्म का आचरण करने का प्रयास कर सकते हो.
You still try to apply the principles of the Dhamma.
और धर्म के तत्व जो है तब भी आप जो है उसके अनुसार.
It's not that when you're married you don't have to practice the precepts.
तो ऐसा नहीं कि जब आपकी शादी होती है तो आपको भी शीलों का आचरण करने की जरूरत नहीं है.
Actually, you probably have to practice them more faithfully. Yeah.
तो देखा जाए तो और भी ज़्यादा प्रामाणिकता से आपको शीलों के आचरण की आवश्यकता होती है.
And we're told that there's no reason why you should not gain liberation while you're married.
और हमें ऐसा भी बताया जाता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों शादी होने के बाद भी आप जो है वो विमुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते.
So you keep up your dhamma practice.
तो आप जो है अपने धम्म का जो अभ्यास है वो उसको बरकरार रखें.
You apply all the principles that we've been looking at.
तो जो सारे तत्व हमने सीखे हैं उन सारे तत्वों को अपने जीवन में उतारें.
You try to relate to your husband or wife and your children in the way that we've been talking about.
और अपने पति या पत्नी या बच्चों से आप उस तरह से संबंध रखें जिस तरह के संबंधों की हम बात कर रहे हैं.
In other words, with maitri.
दूसरे शब्दों में मैत्रीपूर्ण संबंध.
There are difficulties that go with married life.
तो कुछ समस्याएं होती है जो वैवाहिक जीवन के साथ ही जुड़ी होती है.
There are pressures on you, there are responsibilities on you.
तो आपके ऊपर दबाव होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं.
And there's a lot of pressure of time.
और समय का बहुत दबाव होता है.
So you just have to make more effort.
और इसलिए आपको फिर और ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं.
And then you will be able to make progress.
और फिर आप जो है उसमें विकास कर पाओगे.
And it's amazing what some people manage to do, even though they've got families and jobs and so on.
और बहुत विलक्षण बात है कि कुछ लोग कितना विकास कर पाते भले ही उनके पास परिवार है, नौकरी है.
So if you're thinking of getting married, don't think of that as the end of your dhamma life.
तो अगर आप सोच रहे हैं शादी करने का तो ऐसा मत सोचिए कि वो आपके धम्म जीवन का अंत है.
But make sure before you get married that you've got lots of dhamma momentum going.
लेकिन इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि शादी करने के पहले आपके जीवन में आपने धम्मों को पर्याप्त रूप से गतिमान किया हुआ है.
One of the big issues for people in India is making sure that you apply the Dhamma to relations between you and your spouse, your husband or wife.
तो एक समस्या मतलब भारत में आमतौर पे लोगों के सामने आ जाती है कि किस प्रकार से आप और आपके जोड़ीदार के बीच के संबंध जो है वो धम्म के ऊपर आधारित.
Very often what I see is that people have a Buddhist wedding ceremony.
तो अक्सर मैं क्या देखता हूँ कि बौद्ध रीति रिवाजों के साथ जो है लोग शादी करते हैं.
But it's a Hindu marriage.
लेकिन फिर भी वो हिंदू शादी ही होती है.
In other words, the gender roles are just as they are in Hindu society.
दूसरे शब्दों में जो लिंग से संबंधित उनकी अपनी जो भूमिकाएं होती है वैसी होती है जैसे हिंदू धर्म में होती है.
And in the family, there's a little caste system.
और परिवारों में भी एक छोटी जाति व्यवस्था होती है.
And the people are not seeing each other as individual human beings with maitri.
और लोग एक दूसरे को मैत्री के साथ नहीं देखते इस प्रकार से नहीं देखते कि वो भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है.
We're always talking about liberty, equality, fraternity.
और वो हमेशा बातें करते रहते हैं स्वतंत्रता समता बंधुता.
You know, you get these big netajis on the platform.
तो आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े नेताजी होते हैं मंच पे होते हैं.
Liberty, equality, fraternity.
और वहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्रता समता बंधुता.
But what happens at home?
और फिर घर पे क्या होता है?
Wife, get me tea.
बीवी को बोलते जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ.
Child, study to be a doctor, even though he doesn't want to be a doctor.
बच्चा वो डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता उसको मतलब बोलते पढ़ाई करो डॉक्टर.
In other words, it's not really liberty, equality, and fraternity.
और दूसरे शब्दों में वो वास्तविक स्वतंत्रता समता और बंधुता नहीं है.
So those of you who do get married, make sure that you have a Buddhist marriage. Yeah?
तो आप में से वो लोग जो शादी करना चाहते तो इस बात को मतलब जांच ले कि आपकी शादी जो है वो एक बौद्ध शादी हो.
Not a Buddhist wedding with a Hindu marriage.
तो ऐसा नहीं हो कि मतलब बौद्ध रीति रिवाजों के साथ आपकी शादी है लेकिन शादी हिंदू शादी जैसी.
A Buddhist family should be different.
तो बौद्ध परिवार जो है वो अलग होना चाहिए.
So there's something to work on.
तो यहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है.
And yes, there should be. It's not even equality between man and woman.
और स्त्री और पुरुष में समानता भी नहीं है.
Because you just don't think in terms of up, down, or even the same, yeah?
क्योंकि आप इस संदर्भ में सोचते भी नहीं कि ऊपर है, नीचे है या समान है.
You just relate to each other as individuals.
क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इसी तरह से पेश आते हैं जिससे वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है.
Individuals who can attain liberation.
और ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते.
So a lot of work to do to transform Indian society.
तो भारतीय समाज को परिवर्तित करने के लिए बहुत सारा काम करना.
And the new society begins in the family.
और जो नया समाज है उसकी शुरुआत जो है वो परिवार में ही होती है.
And I'm very pleased that there are a number of people here who are the sons and daughters of Dhammacharis and Dhammacharinis.
और मुझे बहुत आनंद होता है इस बात का कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो धम्मचारी और धम्मचारिणी के बेटे या बेटियाँ हैं.
And by and large, the atmosphere at home is very different. Yeah?
और देखा जाए तो उन परिवारों का जो वातावरण है जो बहुत ही अलग है.
So I think this is a big step forward for us.
मुझे लगता है कि हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ा कदम है जो हमने आगे बढ़ाया है. What is the importance of philosophy in this materialistic world? तो इस उपभोक्तावादी दुनिया में तत्वज्ञान का महत्व क्या है?
Well, I suppose it depends what you mean by philosophy.
तो मुझे लगता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि तत्वज्ञान से आपका अर्थ क्या है.
So in a way, I'm not that clear what the questioner is getting at.
और उस तरह से मैं इस विषय में स्पष्ट नहीं हूँ कि इस सवाल में पूछा क्या गया है.
But I think what I've been saying over these last 2 days is really an answer to that, these last few days.
तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो इसका इस सवाल का जवाब है.
We need to understand that there's more to life than just consuming.
तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस बात को समझना है कि केवल चीजों का उपभोग लेना इतना ही जीवन नहीं है, बल्कि जीवन उससे बहुत ज्यादा कुछ है.
Even our own happiness is not served by materialistic consumption.
तो जो भौतिक चीजें होती हैं उनका उपभोग लेने से हमें अपनी खुशी भी नहीं मिलती.
It's not a happy way to live just for ever new material products.
तो हमेशा ही नई नई चीजों के लिए ही जीना कोई बहुत आनंददायी तरीका नहीं है जीने का.
When you get your new smartphone, you feel very happy.
तो जब आपको अपना नया स्मार्टफोन मिल जाता है तो आप बहुत खुशी महसूस करते हैं.
But after a little while, you notice somebody else has got a better one.
लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ध्यान में आता है कि किसी और के पास और अच्छा है वाला है.
And that lovely smartphone that you were worshipping before.
और वो बहुत अच्छा सा स्मार्टफोन जिसकी आप बहुत आराधना कर रहे थे कुछ समय पहले तक.
Becomes nothing. You want the better one, yeah?
और फिर वो आपके लिए कुछ नहीं रह जाता और आपको फिर वो अच्छा वाला चाहिए होता.
This is how materialism works.
और इसी तरह से जो है भौतिकवाद जो अपना काम करता है.
So if philosophy means anything in this context, what it means is understanding that our lives have a deeper and larger purpose.
तो इस संदर्भ में अगर तत्वज्ञान का कुछ अर्थ है तो वो ये है कि इस बात को समझना कि हमारे जीवन का और भी गहरा और बड़ा ऐसा कोई उद्देश्य है.
And that our own happiness is to be found beyond that materialistic craving.
और ये जो मतलब भौतिक चीजों के लिए हमारे मन में जो तृष्णा होती है, इस तृष्णा के परे हमें अपना सुख मिलता है.
That's it? Yeah. Okay, I've done all the questions. Oh, yeah?
I don't know if you want to do it.
One last one. Is there a good one? They're all good, of course.
So this, I think, we have answered. Okay. What to do in life if nothing is temporary?
Nothing is temporary.
I think nothing is permanent.
Nothing is permanent.
तो अगर कोई भी चीज नित्य नहीं है, स्थाई नहीं है, तो फिर जीवन में करना क्या है?
Well, it's a pretty important question, isn't it?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है.
Because nothing is permanent.
क्योंकि कुछ भी जो है वो स्थाई या नित्य नहीं है.
So the first thing you need to do is come to terms with that fact, yeah?
तो पहली बात तो है कि इस सत्य को स्वीकारना, उसके साथ सहज हो जाना कि ये बात सत्य है.
Accept that nothing is permanent.
तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि कुछ भी जो है वो स्थायी या नित्य नहीं है.
Then recognize that if you try to hold on to things as if they were permanent, you're going to suffer.
और फिर उस बात को जाने कि अगर फिर आप चीजों को इस तरह से पकड़ कर रखना चाहते हैं जैसे वो स्थाई है, कभी नहीं बदलेगी, तो आप दुख पाएंगे.
Well, the Buddha's noble truths teach us that the cause of suffering is Krishna, craving.
तो बुद्ध कहते हैं चार्य आर्य सत्य में कि दुख का कारण जो है वो तृष्णा है.
So if this world is impermanent, you're not going to be able to gain satisfaction through craving.
तो अगर ये दुनिया अनित्य है तो तृष्णा के माध्यम से फिर आपको सुख नहीं मिल सकता.
So stop craving.
तो इसलिए तृष्णा रखना बंद कर दीजिए.
Simple.
आसान है.
But not easy.
लेकिन आसान नहीं है.
It's simple but not easy.
तो आसान है लेकिन सरल नहीं है.
Ah, thank you. कठिन है. बहुत कठिन.
तो बहुत कठिन है, मुश्किल.
बहुत मुश्किल. But it's very simple to understand.
लेकिन समझने के लिए आसान है.
So that's where you need to engage with the three prajñas, yeah?
और वहाँ पे फिर आपको तीन प्रज्ञाओं को समझना या उनके साथ जुड़ना पड़ता.
So if everything is impermanent, learn to really deeply accept that.
तो अगर हर चीज अनित्य है तो इस बात को सीखिए कि आप सच में और बहुत गहराई से उस बात को स्वीकार करें.
Then you'll live free.
और तब आप एक मुक्त जीवन जियोगे.
And an endless inner enjoyment will come to you.
और ऐसा आंतरिक आनंद आप में आएगा कि जिसका कोई अंत नहीं रहेगा.
In other words, you'll be liberated
दूसरे शब्दों में आप विमुक्त हो जाओगे.
So undertake that educational revolution, the movement towards liberation.
और इसीलिए वो अपने हाथ में ले लीजिए वो काम की शैक्षणिक क्रांति करनी है जो एक आंदोलन है विमुक्ति की ओर.
Thank you.